ça, c'est sûr. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Ballabha Girivar Dhari. Yashodha Nandana Braja Jana Ranjana. Yashodha Nandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Banachari. Yamuna Tira Banachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Ballabha Girivar Dhari. Prabhupada. Gopi Jana Ballabha Girivar Dhari. Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Jai Radha Shyam Sundar Ki Jai. Jai Prabhupada. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमः। हरि बोल। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और निताई की जाए शिल प्रभुपाद की जाए दादा पार्थ साहब की चीजें। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol, Nitai Gaur Hari. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभुराज काचार्य स्तोत्र शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की इस कॉन्फाउंडर आचार्य सीवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ग्रंथ राशिमत भागवतम की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय द्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की श्री श्री राधा पार्थ सारथी भगवान की बोल प्रेमानंदी हरि हरि बोल ऑल ग्लोरी टू असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरी टू असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड श्री गौरंग ऑल ग्लोरी टू श्री प्रभुपाद श्री प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्कंद 8 और अध्याय 5 श्लोक संख्या 7 से लेकर के 16 तक 10 श्लोक हैं इनको पढ़ना है और पहले 8 श्लोक तो मैं अपने आप पढ़ूंगा आप सुनिए केवल और जो 15वां और 16वां श्लोक है वो हम सब मिलकर के दोहराएंगे पहले हाथ जोड़ करके दोनों प्रणाम कीजिए भगवान को ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं दधाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्री गुरुन वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वांचा कल्पतरु भयश्च कृपा सिंधुभेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। देवताओं द्वारा सुरक्षा के लिए श्री भगवान से याचना, ये हमारे अध्याय का हेडिंग है आज का। इसका रेफरेंस इस प्रकार से शुरू हुआ है, ये जो कथा है इतिहास, ये छठे मनु चक्षुषु मनु के बीच समय की ये कथा है सारी, ये पांचवें और छठे मनु जो हुए हैं उसमें देवता लोग अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को। वो ऐसा समय था जब देवताओं और असुरों का युद्ध भी शुरू हो गया था और उधर से देवताओं को श्राप दे दिया था दुर्वासा मुनि जी ने। तो ये उस समय का इतिहास है, ये अभी मैं पढ़ूंगा, आप केवल सुनिए। केवल अनुवाद पढ़ूं या श्लोक भी पढ़ूं? श्लोक भी पढ़ूं, ठीक है। षष्ठश्च चक्षुषा पुत्राश्च चक्षुषो नाम वैमनु पुरु पुरुष सुधुम्न प्रमुखाश्च चक्षुषात्मजा। चक्षु का पुत्र चाक्षुष कहलाया, जो छठा मनु था उसके कई पुत्र थे जिनमें पुरु पुरुष तथा सुधुम्न प्रमुख थे। पांच मनुओं के बारे में पहले हमने छठे श्लोक तक पढ़ा है, अब ये छठे श्लोक का छठे मनु का वर्णन हो रहा है। इंद्रो मंत्र द्रुमस्तत्र देवा अप्यादयोगना मुन्यस तत्र वै राजन ही विष्म द्वीर का दया। चाक्षुषा मनु के राज्यकाल में स्वर्ग का राजा मंत्र द्रुम के नाम से विख्यात था। देवताओं में अपायन गण तथा सप्तऋषियों में हविष्मान तथा बीरक प्रमुख थे। इन श्लोकों से हमें यह पता चलता है कि इंद्र कई हुए हैं। इंद्र एक्चुअली पद है, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, इस प्रकार के ये पद है इंद्र, और उनके नाम भी अलग अलग हैं। इंद्रों के नाम तो अलग होते हैं, जैसे हमारे मंदिर के प्रेसिडेंट हैं पंचगोड़ा, उनका नाम है पंचगोड़ा। या हमारे नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम है, लेकिन प्रधानमंत्री तो बदलते रहते हैं। वैसे ही इंद्र भी समय आने पर बदलते रहते हैं। तो इंद्र एक पद हुआ, जैसे प्रधानमंत्री एक पद है, उसी प्रकार इंद्र एक पद है। औदा, उर्दू में बोलते औदा। चक्षुष मनु के राज्यकाल में स्वर्ग का राजा मंत्र द्रुम के नाम से विख्यात था। देवताओं में आप्यगण तथा सप्तऋषियों में हविष्मान तथा वीरक प्रमुख थे। तत्रापि देव संभूतयाम वैराजस्या भावत सुतः अजितो नाम भगवान शेन जगतः पति। इस छठवें मनमंत्र में ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री विष्णु अपने अंश विस्तार के रूप में प्रकट हुए। अलग अलग मनमंत्रों में अलग अलग मनु होते हैं, ब्रह्मा जी की एक दिन में 14 मनु हो जाते हैं, मतलब 12 घंटे का उनका दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। तो यहां बताया गया कि इस छठवें मनमंत्र में ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री विष्णु अपने अंश विस्तार के रूप में प्रकट हुए। वह व्यराज की पत्नी देव संभूति की कोख से उत्पन्न हुए और उनका नाम अजित था। पयोधिम येन निर्मथ सुरागनाम सुरानाम सादिता सुधा ब्रह्मानो अंभसी धृता कुर्म रूपेण मंधरा। क्षीर सागर का मंथन करके अजित ने देवताओं के लिए अमृत उत्पन्न किया। कछुए के रूप में वे महान मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किए इधर उधर हिल रहे थे। जब देवता लोग हार गए, धन की कमी हो गई, उस समय ब्रह्मा जी आदि के कहने से भगवान ने अजित रूप में अवतार लिया है, कश्यप के रूप में, और फिर देवताओं की मदद की थी। देवता एक्चुअली थोड़े थोड़े भगवान के भक्त भी होते हैं, कभी कभी खराबियां भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान उनकी मदद करते हैं। लेकिन जो दानव वगैरह हैं तो वो तो पूरी तरह विरोधी होते हैं भगवान के, इसलिए भगवान उनकी साइड नहीं होते हैं, उनकी तरफदारी नहीं करते हैं। तो देवताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कछुए का रूप धारण किया। ये अगले अध्यायों में हम पढ़ेंगे, जब समुद्र का मंथन किया गया था। श्री राजो वाच यथा भगवता ब्रह्मन् मथिता क्षीर सागर यदर्थम वा यदश्चांद्री दधार अम्बुजरात्मना यथामृतम सुरे प्राप्तम किम चान्यद् भवता तथा एतद् भगवतः कर्म वदस्व परमाद्भुतम्। राजा परीक्षित ने पूछा, हे महान ब्राह्मण सुखदेव सुगोस्वामी, भगवान श्री विष्णु ने क्षीर सागर का मंथन क्यों और कैसे किया? थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया आपको पहले, क्यों किया? वे कश्यप रूप में जल के भीतर किस लिए रहे और मंदर पर्वत को क्यों धारण किए रहे? देवताओं ने किस तरह अमृत प्राप्त किया और सागर मंथन से अन्य कौन कौन सी वस्तुएं उत्पन्न हुई? कृपा करके श्री भगवान के इन सारे अद्भुत कार्यों का वर्णन करिए। त्वया संकथ्यमानेन महिमना सात्वताम पते नाति तृप्यति मे चित्तम सुचिरम तापतापितम। मेरा हृदय भौतिक जीवन के तीन तापों से विचलित है, किंतु वह अब भी आपके द्वारा वर्णित किए जा रहे भक्तों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के यशस्वी कार्यकलापों को सुनकर तृप्त नहीं हुआ है। हाँ, ये तो है, अगर वक्ता एज इट इज बोल रहा है, जो शास्त्रों में कहा गया है, प्रभुपाद जी द्वारा कहा गया है, तो सुनने वाले को भी आनंद आता है और दिल करता है और सुने और सुने। और जब कभी मेरे जैसा कोई वक्ता आ जाता है तो उसमें इतना मजा नहीं आता है, तो वक्ता को भी बड़ा सावधानी पूर्वक शास्त्रों का ध्यान होना चाहिए ज्ञान होना चाहिए और खुद भक्त होना चाहिए, भगवान का प्रेमी होना चाहिए, तभी सुनने वालों को मजा आता है। अदरवाइज ना सुनाने वाले को मजा आता है ना सुनने वाले को मजा आता है। जब सुनने में मजा आता है तो फिर टाइम होने पर भी दिल करता और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को जब कहा अभी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं 15 मिनट का ब्रेक, उसके बाद थोड़ा द्वारा से शुरू करेंगे और तब तक आप पानी पूनी पी लो ना, तो परीक्षित महाराज बोलते हैं नहीं 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 अभी नहीं, पानी तो बहुत पिया, पूरी जीवन पर खाया पिया है ना, पूरी जिंदगी निकल गई, कई जन्मों तक 84 लाख जूनियों में यही तो काम करते रहे हम लोग कई जन्मों तक, खाना पीना सोना, तो अभी और नहीं, अभी तो केवल हमें सुनना है। तब कंटिन्यू किया सुखदेव गोस्वामी ने, शिलशूत उवाच, मेरा हृदय भौतिक जीवन के 3 तापों से विचलित है, किंतु वह अब भी आपके द्वारा वर्णित किए जा रहे भक्तों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के यशस्वी कार्यकलापों को सुनकर तृप्त नहीं हुआ है। शिलस्यूत उवाच, संप्रिष्टो भगवान एव द्वापायन सुतो द्विजा अभिनंद्य हरेर वीर्यम अभ्याचष्टुम प्रचक्रमे। शिलस्यूत गोस्वामी ने कहा यहां नैमी शरण्य में एकत्रित हे विद्वान ब्राह्मणों, जब द्वापायन पुत्र शिल सुखदेव गोस्वामी से राजा ने इस तरह से प्रश्न पूछा तो उन्होंने राजा को बधाई दी और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के यश को और भी आगे वर्णन करने का प्रयास किया। यहां नैमी शरण्य में एकत्रित हे विद्वान ब्राह्मणों, जब द्वापायन पुत्र शील सुखदेव गोस्वामी से राजा ने इस तरह से प्रश्न पूछा तो उन्होंने राजा को बधाई दी और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के यश को और आगे वर्णन करने का प्रयास किया। तो ये नेचुरल है कि जब वक्ता और सुनना चाहते हैं तो सुनने वाले श्रोता जब और सुनना चाहते हैं तो वक्ता कि अगर सही वक्ता है तो उसको मजा आता है सुनाने का, तो फिर और वो उत्साह के साथ भगवान की कथाएं सुनाता है। तो वही बात यहां पर बताई गई है। आज के श्लोक जो भी है 15वां, पहले मैं पढ़ूंगा आप सुनिए उसके बाद फिर दोहराएंगे, पहले मैं एक दफा पढ़ लेता हूं। श्री शुक उवाच, मेरे बाद अभी एक बार मैं एक बार पढ़ूंगा दोनों श्लोक, उसके बाद फिर जब बोलूंगा ना तब बोलिए मेरे पीछे आप। श्री शुक उवाच, यदा युद्धे असुरेर देवा बध्यमाना सितायुधे कृतासवो निपतिता नेतेत अस्तरेन संभूरिशः यदा दुर्वासा शापेन सेन्द्रा लोकस्त्रो नृपः निश्रीकाश्च अभ्यंस्तत्र नेशुर इज्जादया क्रिया। अभी मेरे पीछे बताइए। श्री शुक उवाच, यदा युद्धे असुरेर देवा वध्यमानः सितायुधे गता सवो निपतिता नेतित अस्तरेन संभूरिशा यदा दुर्वासा सापेन सेन्द्रा लोकस्त्रयो नृप नीह श्री निनीह श्री काश च अभ्यन्स्तत्र नेशुर इज्जादया क्रिया। एक ही श्लोक पढ़ेंगे 16 सारे जने, दोनों श्लोक फिर लंबे हो जाएंगे। यदा दुर्वासा शापेन सेन्द्रा लोकास्त्रयो नृपः नीह श्री काश्च अभ्यन्स्तत्र नेशुर इज्जादया क्रिया। पढ़िए शापेन लेडीज बोलिए, लेडीज बोलिए। यदा दुर्वासा शापेन इंद्रा लोकत्रयो नृपः नी श्री काशांच भवन्स्तत्र नीशुरिज्जादया क्रिया। शब्दार्थ श्री शुको वाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यदा जब युद्धे युद्ध में असुरे असुरों द्वारा देवा देवतागण वध्यमाना बांधे गए, शित अयुद्धे सर्प अयुद्धों द्वारा गतासवः प्रायामृत निपतितः उनमें से कुछ गिरे हुए न नहीं उत्तिष्ठरे न पुनः उठ पाए स्म ऐसे हो गए भूरिशः उनमें से अधिकांश। यदा जब दुर्वासः श्री दुर्वासा मुनि के शापेन शाप से स स इंद्र इंद्र समेत लोकात्रया तीनों लोक नृप हे राजा निश्रिका बिना किसी भौतिक ऐश्वर्य के च भी अभवन हो गया, अभवन नहीं है एक्चुअली ये अभवन ना जो है साइलेंट है थोड़ा। तत्र उस समय नेशु संपन्न नहीं हो सका इज्जादया यज्ञ क्रिया अनु सॉरी आद्या यज्ञ क्रिया अनुष्ठान। अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद के। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अब असुरों ने अपने अपने सर्प अयुधों से युद्ध में देवताओं पर घमासान आक्रमण कर दिया तो अनेक देवता धराशायी हो गए और अपने प्राणों को खो दिए, वे फिर से जीवित नहीं किए जा सके। हे राजन, उस समय देवताओं को श्री दुर्वासा मुनि ने शाप दिया हुआ था, तीनों लोग दृढ़ता से प्रभावित थे इसलिए अनुष्ठान संपन्न नहीं हो पा रहे थे, इसके प्रभाव अत्यंत गंभीर थे। मेरे पीछे दुराइए, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब असुरों ने अपने अपने सर्प युद्धों से युद्ध में देवताओं पर घमासान आक्रमण कर दिया तो अनेक देवता धराशायी हो गए और अपने प्राणों को खो दिए, वे फिर से जीवित नहीं किए जा सके। हे राजन, उस समय देवताओं को श्री दुर्वासा मुनि ने साप दिया हुआ था। तीनों लोग दरिद्रता से प्रभावित थे, इसलिए अनुष्ठान संपन्न नहीं हो पा रहे थे। इसके प्रभाव अत्यंत गंभीर थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, ये तात्पर्य पढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे रेफरेंस थोड़ा पढ़ते हैं। जैसे शुरू में मैंने बताया आपको कि छठे मनु के समय का ये घटना है, इतिहास है। जैसे आपको पहले आपने पढ़ा होगा भागवतम में कि चार युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और चारों युगों को मिलकर के एक दिव्य युग बनता है और 71 युग मिलकर के एक मनमंत्र बनता है जो ब्रह्मा जी का एक दिन या 12 घंटे कहलाते हैं। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। अच्छा, जो इस समय हमारे मनु जो हैं वो 7वें मनु हैं और इनका नाम है विवस्वत मनु। हम विवस्वत मनु की संतान हैं, इस समय उनकी प्रजा हैं। वो विवासवान के पुत्र हैं ये, और इनकी आयु जो है 27 दिव्य युग, मतलब 27 × 43,20,000। ये गुनते रहो आप अपने आप, ये चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में बताया गया है ये। और उसके बाद 28वां युग शुरू हो चुका है। 28वें दिव्य युग में, द्वापर युग में, या 28वें दिव्य युग होता है द्वापर युग उसका, तो भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं। इसी दिव्य युग में, कलयुग में, जो भी कलयुग चल रहा है इसी दिव्य युग में, गौरंग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए इस धरा के ऊपर। और हम भी कितने भाग्यशाली हैं, आप सब, हम भी उसी समय यहां पैदा हुए हैं इस युग में, तो इसका लाभ उठाना चाहिए हमें। चैतन्य महाप्रभु जी के युग में हम पैदा हुए हैं, खास करके चैतन्य महाप्रभु जी हमारे आए, हमारे लिए, हमें हमारा उद्धार करने के लिए आए हुए हैं इस भौतिक जगत में, तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। और शास्त्रों में प्रमाण दिया गया है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर जयंती ही सुमेधशा। सुमेधशा मतलब जो बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं इस कलयुग में, भगवान चैतन्य महाप्रभु जी का, जो हमेशा भगवान का कीर्तन करते हैं, अपने पार्षदों के साथ आए हुए हैं, अपने सेवकों के साथ आए हुए हैं, उनका गुणगान करते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं कि इस युग का हमें लाभ उठाना है। और हरिनाम संकीर्तन जहां भी हो हमें भाग लेना है। संकीर्तन मतलब कंग्रीगेशन, जब पूरा समूह इकट्ठे होकर के 10, 12, 5 लोग मिलकर के जोर जोर से कीर्तन करते हैं, मृदंग बजाते हैं, करताल बजाते हैं और नाचते हैं, तब उसको संकीर्तन कहा जाता है। और केवल जो खुद अपनी माला के ऊपर अपने लिए करते हैं वो जप कहलाता है। इन दोनों में अंतर है। सो जैसा हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा कि ये जो घटना है जब देवताओं ने प्रार्थना की है वो चक्षुषु मनु के जमाने की है। तो एक बार क्या हुआ कि दुर्वासा ऋषि वो देवराज इंद्र के पास गए। वैसे इसके भी अलग अलग मनमंत्रों में अलग अलग युगों में थोड़ी सी कथाओं में फर्क है, लेकिन हमें तो वो पढ़ना है जो हमें भागवतम में बताया गया है। बाकी और भी कथाएं पढ़ेंगे आप तो थोड़ा थोड़ा अंतर मिलता है। जैसे एक में बताया गया है कि जब दुर्वासा मुनि ने पारिजात फूलों का हार दिया तो उन्होंने अपने पत्नी को देना चाहा, तो पत्नी ने ऐसे मुंह लटका दिया, ये को हार है पहनने वाला, ऐसा करके तो उसने हाथी के गले में डाल दिया। तो इस प्रकार भी पता है, लेकिन हमें भागवतम जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसके बारे ऐसा ही पढ़ना है हमने। सो दुर्वासा मुनि गए स्वर्ग लोक में और देवता भी लोग गए थे, क्योंकि जब आदमी के पास पैसा धन बड़ी शोहरत या सुंदरता है आदमी के पास तो उसका मन बड़ा अभिमानी हो जाता है, बड़ा अभिमान हो जाता है आदमी में, नशा हो जाता है अपनी सुंदरता का भी अपने पैसे का भी। तो थोड़ा ऐशो आराम थोड़ा गलत कामों में थोड़ा लग जाता है आदमी। तो यही समझाने के लिए अन्य देवी देवता भी गए थे और दुर्वासा मुनि भी गए थे। दुर्वासा मुनि शिवजी के अवतार हैं, बड़े गुस्से वाले हैं, लेकिन दुर्वासा मुनि को मनाना बहुत मुश्किल होता है, इतना क्रोधित है। हालांकि भगवान शिव भी गुस्सा कर जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन भगवान शिव को मनाना बहुत आसान होता है, जल्दी मान जाते हैं वो, ये फर्क है। सो दुर्वासा मुनि ने इंद्र को अपना हार दिया पहनने के लिए, लेकिन उसको वो हार पसंद नहीं आया। पर जाता ये कोई स्वर्ग लोक में ऐसे हार हैं, ऐसे फूल थोड़े होते हैं, स्वर्ग लोक में तो जगह जगह खुशबू फैली हुई है और इसमें इतनी ज्यादा खुशबू भी नहीं है, ये कहां से ले आया, मन में सोचा उसने। और वो हार हाथी के गले में डाल दिया। तो ये देख करके दुर्वासा मुनि को बहुत गुस्सा आया कि देखो मैंने इसको भेंट दी है और इसने तो उसका निरादर कर दिया, अपने गले में तो डाली नहीं, हाथी के गले में डाली और हाथी ने भी उसको अपनी सूंड से उतार करके अपने पैरों से रोन डाला है, तो ये तो ठीक नहीं किया। हमें भी इस बारे में समझ होनी चाहिए कि जब हम किसी को कोई भेंट देते हैं तो जो लेने वाला है उसको बड़े सम्मान से वो भेंट लेनी चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। कोई जा तो बड़े बड़ा पैसे वाला है, कोई उसके घर में कोई गरीब आदमी जा रहा है तो बेचारा अपने हिसाब से देगा ना भेंट, तो ये तो बड़ी तुच्छ भेंट है तो उसका निरादर करे तो ये ठीक नहीं है, ये हमें इससे पता चलता है। सो दुर्वासा मुनि ने श्राप दे दिया, जाओ तुम जिस धन वैभव के लक्ष्मी के पीछे तुम इतना अभिमान कर रहे हो, जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। केवल इंद्र ही श्रीहीन नहीं हुआ, क्योंकि वो तीनों लोकों का राजा था, इंद्र तीनों लोगों, तीनों लोग उनके कंट्रोल में आते हैं, देवताओं का राजा है वो, तीनों लोग भी उसके अंडर में आते हैं, तो तीनों लोग जो हैं श्रीहीन हो गए, तंगी हो गई हर चीज की, खाने पीने की, पैसे की, सबकी तंगी हो गई है। तब सारे देवताओं ने इकट्ठे मिलकर के सलाह की, ब्रह्मा जी के पास गए, फिर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए क्षीर सागर में, तो ये कथा आगे आएगी, और उनको एक सलाह दी कि आप संधि कर लो, राक्षसों को दानवों को सलाह दी कि संधि करो और इसमें तुम्हारा फायदा हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी यहां पर लिखते हैं कि कभी कभी जब भी आप कभी कमजोर स्थिति में हैं तो हमें संधि कर लेनी चाहिए अपना काम निकालने के लिए, अपना काम निकालने के लिए हमें संधि कर लेनी चाहिए। तो ऐसे दानवों ने भी और देवताओं ने भी आपस में संधि कर ली और समुद्र मंथन हुआ, उसमें से फिर बहुत सारी चीजें निकली हैं, वो अलग विषय है आगे। तो मुख्य बात यह है कि दुर्वासा मुनि जो हैं बड़े गुस्से वाले हैं, इनसे कोई बच नहीं पाया है उनके गुस्से से। हाँ, लेकिन कुंती माता जो हैं वो उन्होंने इनको मना लिया था, नहीं तो आमतौर पे ये सबका बुरा ही करते हैं, ये गुस्से में आकर के। तो ये पीछे का रेफरेंस थोड़ा सा मैंने आपको बताया, अभी हम अपना पढ़ेंगे आज का तात्पर्य। हाँ, एक बात और भूल गया मैं, राजा अम्बरीश के आगे भी इनका गुस्सा नहीं चला था। कभी कभी बड़े गुस्से वाला आदमी तो कई लोगों को डराता है, लेकिन कभी कभी खुद भी डरना पड़ता है। जो बड़ा गुस्से वाला आदमी है कभी कभी उसको खुद भी डरना पड़ता है, महाराज अम्बरीश से डरना पड़ा था। और आपको कथा पता ही है कि हम जब एकादशी के दिन ये पहुंचे वहां पर दुर्वासा मुनि, तो उनसे पहले ही व्रत इन्होंने पारण कर लिया था, टाइम समय हो गया था व्रत का पारण करने का, तो इनको एकदम गुस्सा आ गया, मेरे से पहले, मैं मेहमान इनका हूं, पहले मुझे खिलाना चाहिए था, पहले खुद खा लिया, है ना। तो वो तो भगवान के भक्त थे अम्बरीश महाराज, सुदर्शन चक्र उनका रखवाली करता था, तो उसके पीछे लगा दिया, लग गया सुदर्शन चक्र, दुर्वासा मुनि के पीछे चल गया। दुर्वासा मुनि जगह जगह पर घूमे, गए ब्रह्मा के पास, शिव जी के पास, कहाँ कहाँ गए, तो आगर में भगवान विष्णु के पास गए, नारायण के पास गए, तो बोले भाई जिसका तूने अपराध किया है उसी के पास जाकर के क्षमा मांगो। तो ये थोड़ा सा रेफरेंस आपको दिया है। बाकी और शिक्षा ये है कि इस कि हमें कोई भी अगर भेंट देता है, चाहे वो जितनी मर्जी तुच्छ है, बड़ा सम्मान पूर्वक हमें ग्रहण करना चाहिए। कभी कभी हम भी देखते हैं कि कोई भक्त किसी को हार डालता है तो उसको वो हार पसंद नहीं है, तो एकदम गले में मिट डालने देगा, उठा करके साइड में रख देगा या किसी को और दे देगा, ये तो ये गलत बात है। कुछ दिन तो, कुछ समय तो, 5 मिनट तो कम से कम या 2 मिनट अपने गले में रहने दो, उसके बाद किसी और को दे दीजिए, तो वो और को भी नहीं देंगे, क्या करके एक तरफ कूड़ेदान में फेंक देंगे। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा ऐसा वर्णन मिलता है कि जब दुर्वासा मुनि मार्ग पर जा रहे थे तो उन्होंने इंद्र को अपने हाथी की पीठ पर बैठे देखा। उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी एक माला उतारकर इंद्र के गले में डाल दी, किंतु अभिमान के कारण इंद्र ने श्री दुर्वासा मुनि के आदर का ध्यान न रखते हुए वे माला निकालकर अपने बहन हाथी की सूंड में पहना दी। पशु होने के कारण हाथी उस माला के महत्व को नहीं समझ पाया, अतएव उसने वह माला नीचे गिरा दी और उसे अपने पैरों से रौंद डाला। इस अपमानजनक व्यवहार को देखकर श्री दुर्वासा मुनि ने तुरंत ही इंद्र को समग्र भौतिक ऐश्वर्य से रहित दरिद्र होने का शाप दे दिया। इस प्रकार एक और युद्ध कर रहे असुरों से दुखी होकर और दूसरी ओर दुर्वासा मुनि के शाप के कारण देवताओं ने तीनों लोकों का अपना सारा भौतिक ऐश्वर्य गुमा दिया। एक तो श्राप दरिद्र हो जाओ और दूसरा असुरों के साथ युद्ध हो रहा है तो उसमें बेचारे वो जीत नहीं सकेंगे, तेरे देवता भी मरे वहां पर, क्योंकि असुर जो हैं वो भी कम ताकतवर नहीं होते हैं, बड़े ताकतवर होते हैं, कभी कभी तो देवताओं से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं वो लोग। जैसे एक दफा स्टेटमेंट में पढ़ रहा था कहीं, कुछ दिन हुए, पाकिस्तान में आजकल बड़ी दरिद्रता छाई हुई है, तो कुछ एक्सपर्ट जो आर्मी एक्सपर्ट हैं वो बोलते हैं भी ये अच्छा टाइम है अभी आजाद कश्मीर ले लो इनसे, वो तो अभी बिल्कुल गरीब हैं, लड़ने के काबिल नहीं रहे अभी, तो खैर वो भारत ने नहीं किया ऐसा। मतलब ये ऐसा समय होता है जब आदमी चारों तरफ से दुखों से घिरा हुआ है और कोई दूसरा आदमी आकर के उन पर हमला कर दे तो वो बेचारा जीत नहीं पाएगा। यही बात यहां पर बताई गई है कि असुर लोग, सॉरी देवता लोग असुरों से लड़ाई में हार रहे थे और उधर से दुर्वासा मुनि का श्राप भी मिल गया, जाओ दरिद्र हो जाओ, बहुत नाजुक हालत हो गई। भौतिकतावादी उन्नति में अत्यधिक ऐश्वर्यवान होना कभी कभी घातक होता है। कभी कभी बहुत पैसा जब आ जाए ना, अथाह पैसा आ जाए, बड़ा घातक होता है, बुरी लत लग जाती है, दारू पीने की, जुआ खेलने की, बड़े बड़े लोग जो हैं, सारे नहीं लेकिन कुछ लोग, ज्यादातर लोग दारू पिएंगे, जुआ खेलेंगे और बुरी बुरी आदतें उनको पड़ जाती हैं पैसे के मद में। जैसे कुबेर के पुत्र, उन्होंने भी देखो क्या क्या कमाल किया वहां पर, नल कुंवर मणिग्रीव, औरतों के साथ नंगा होकर के नहा रहे हैं। तो ऐसा आम तौर पे जो बड़ा धनवान हो जाता है, बड़ा पैसे वाला हो जाता है, तो इस किस्म की बातें उनके मन में होती है, किसी को समझता ही नहीं है का, यहां तक कि कभी कभी भक्तों का भी अपराध कर देते हैं ऐसे लोग। भौतिक ऐश्वर्य से युक्त व्यक्ति किसी की परवाह नहीं करता और इस तरह वह महापुरुषों तथा भक्तों तथा महान संतों के प्रति अपराध करता है। कभी कभी बड़े बड़े डॉनर होते हैं, किसी महात्मा से दीक्षा भी ले ली, गुरु भी बना लिया, लेकिन उस महात्मा को अपने कंट्रोल में चलाते हैं कि मैं उसका अभिमान होता, मैं पैसे वाला हूं, तो अपने गुरु को भी अपने कंट्रोल में रखते हैं वो, लेकिन जो सही गुरु है वो उनके कंट्रोल में नहीं आता है। लेकिन आमतौर पर गुरु बेचारे आ जाते हैं कभी कभी पैसे वालों के कंट्रोल में, नियंत्रण में। भौतिक ऐश्वर्य से युक्त व्यक्ति किसी की परवाह नहीं करता और इस तरह वह महापुरुषों यथा भक्तों तथा महान संतों के प्रति अपराध करता है। भौतिक ऐश्वर्य की यही रीति है, प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक ऐश्वर्य की रीति यही है, ये रिवाज है इसका, होता ही है ऐसा आमतौर पर, कुछ कोई आधा परसेंट से भी कम लोग ठीक ठाक रहे तो रहे, बाकी अदरवाइज ऐसा होता ही है। जैसा कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, धन दुर्मांध अर्थात अत्यधिक धन से आदमी अंधा बन जाता है। पैसा आ जाए तब भी अंधा, जब पावर पोस्ट आ जाए तब भी अंधा, जब बड़ी सुंदरता हो जाए किसी में तब भी अंधा हो जाता है आदमी अभिमान में। स्वर्ग में इंद्र तक के साथ यही होता है, तो फिर इस भौतिक जगत के अन्य लोगों के विषय में क्या कहा जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इतना बड़ा देवता जो है इंद्र, उसको ये हालत हो जाती है, उसकी ये हालत, इतना धनमंद हो जाता है, धना धन में अंधा हो जाता है, तो हम लोगों की भी साथ के, हम किस खेत की मूली हैं। अच्छा है भगवान ने धन नहीं दिया ज्यादा। भौतिक रूप से ऐश्वर्यवान होने पर मनुष्य को वैष्णवों एवं संत पुरुषों के प्रति गंभीर होना चाहिए तथा अच्छा व्यवहार करना सीखना चाहिए, अन्यथा उसका पतन हो जाएगा। अभी रुक्मिणी बिहार में एक हमें एक बना बनाया मंदिर और कुछ 27 कमरे अर्जुन हरि पंजाबी बाग दिल्ली से हैं, उन्होंने डोनेट किए हैं, लेकिन उनको देखने से ऐसा लगा कि वो बिल्कुल सामने नहीं आए। वो वहां पर जब फंक्शन चल रहा था लेने का, एक्सटेंशन सेंटर हमारा किशन राम का एक्सटेंशन सेंटर हुआ है, तो बिल्कुल चुपचाप पीछे रहे वो। तो ऐसा होना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा पैसा भी आ गया है तो अभिमान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भक्तों का, संतों का, गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। 2 मिनट है, अभी 2 मिनट में कोई अपने कमेंट्स, कोई प्रश्न या कुछ ऐड करना चाहता है बीच में तो कह सकते हैं, नहीं तो विराम देंगे। किसे है? ठीक है, फिर बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के श्लोक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि धन आने पर, सुंदरता आने पर, बड़ी ताकत होने पर हमें अभी गर्व नहीं करना है। ये लबोलवाब है आज के श्लोक का। धन्यवाद सबका। हरे कृष्णा।